नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें बच्चों को लक्षित करने और उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापन शामिल हैं। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए दिशा निर्देशों में सैरोगेट विज्ञापनों पर भी रोक लगाई गई और विज्ञापन दिखाते समय किसी उद्घोषणा में अधिक पारदर्शिता लाने की बात कही गई। ये दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सैरोगेट विज्ञापन छद्म विज्ञापन होते हैं जो किसी अन्य उत्पाद का प्रचार करते हैं, जैसे सोडा वाटर के बहाने शराब का प्रचार करना या इलायची के बहाने गुटखे का। नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले मानक कच्चे तेल का दाम एक दशक के उच्च स्तर $121 प्रति बैरल पर पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल का बिक्री मूल्य स्थिर बना हुआ है। PPAC के आंकड़ों के अनुसार भारतीय मानक कच्चा तेल 9 जून को $121.28 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इससे पहले कीमत का ये स्तर फरवरी मार्च 2012 में देखा गया था। PPAC के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के तुरंत बाद भारतीय कच्चा तेल मानक मूल्य 25 फरवरी और 29 मार्च के बीच औसतन $111.86 प्रति बैरल रहा। 30 मार्च से 27 अप्रैल के बीच ये औसतन $103.44 प्रति बैरल था। अमेरिका जैसे प्रमुख ग्राहकों की मजबूत मांग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बृहस्पतिवार को 13 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गई, हालांकि शुक्रवार को इसमें गिरावट आई। बजाज ऑटो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी चेतक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने शुक्रवार को यहां अकुर्दी में अपने एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। कंपनी ने कहा कि चेतक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और उसके विक्रेता साझेदार इस नए EV विनिर्माण संयंत्र में लगभग 750 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। कंपनी ने कहा कि 6.5 एकड़ भूमि में फैले 5 लाख इकाई वार्षिक क्षमता वाले दो पहिया विनिर्माण संयंत्र का लक्ष्य घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करना है। बजाज ने अक्टूबर 2019 में अपने प्रतिष्ठित चेतक स्कूटर को इलेक्ट्रिक अवतार में वापस पेश किया था। कंपनी ने कहा कि इस पेशकश के बाद से उसने 14,000 से अधिक चेतक ई स्कूटर बेचे हैं और 16,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्कूलों पर अतिरिक्त अध्ययन का दबाव डालने की शिकायतों के बीच बायजूस और अन अकेडमी जैसे मंचों के साथ एक बैठक बुलाई है। इससे पहले मंत्रालय ने कई तरह की शिकायतें मिलने के बाद रेस्टोरों, उद्योग और परिवहन यात्रा संबंधी सेवाएं देने वाली कंपनियों को फटकार लगाई थी। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार बच्चों पर दबाव डालने वाले शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के विज्ञापनों, खासकर बायजूस के नए विज्ञापन दो शिक्षक के लाभ के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा, हमें इसकी जानकारी है। मैंने अगले हफ्ते या उसके बाद शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई है। उन्होंने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार के नए दिशा निर्देशों पर संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। वहीं ई कॉमर्स कंपनियों पर नकली या फर्जी समीक्षाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर सचिव ने कहा कि नकली समीक्षाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने को लेकर एक समिति का गठन किया गया है। ईमानदारी से कोशिश के बावजूद व्यावसायिक विफलता पर कोई कलंक नहीं होना चाहिए और कंपनियों को सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का मौका देना चाहिए। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के चेयरमैन रवि मित्तल ने शुक्रवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में दिवाला प्रक्रिया अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और दिवाला ढांचे को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत IBBI द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मित्तल ने कहा कि यदि कोई कंपनी बाहरी कारणों सहित किसी भी वजह से विफल हो जाती है तो उसे बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंपनी पर असफलता से जुड़ा कोई कलंक नहीं होना चाहिए और उसे फिर से शुरुआत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में भीषण आर्थिक संकट से निपटने के लिए निवेश मंत्रालय सहित दो नए मंत्रालय बनाए हैं। नव गठित प्रौद्योगिकी और निवेश संवर्धन मंत्रालय श्रीलंका में आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देते हुए प्रत्यक्ष विदेश निवेश और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देगा। इसके अलावा महिला बाल मामले और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय नाम से एक और मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय के तहत 15 संस्थान शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण और समृद्धि विकास विभाग भी है। कपड़ा सचिव यूपी सिंह ने शुक्रवार को कहा कि तकनीकी वस्त्र देश में तेजी से बढ़ता क्षेत्र है और इसे और बढ़ावा देने के लिए उद्योग के लिए आवश्यक मानकों को अपनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार को घरेलू उद्योग के साथ विचार विमर्श करके क्षेत्र के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के बारे में विचार करना होगा। तकनीकी वस्त्र के लिए मानकों पर आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र के लिए हमने कोई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं, लेकिन आगे जाकर हमें ऐसा करना पड़ेगा। तकनीकी वस्त्रों का उपयोग कृषि, चिकित्सा, राजमार्ग निर्माण, खेल, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा परिधान जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।